राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जसोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you. माधव राधा माधव राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की स्कंद संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की श्री श्री राधा माधव जीव की श्री श्री निताय गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर हरि प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ चतुर्थ स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 3। तद्दर्शनेन गतसाध्व सखिता पवन्दतांगं विनिमय्य दण्डवत् ऋग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन् निवार्भक चुम्बन् इवास्येन भुजेरिवाश्लिषन् तद्दर्शनेनागत साध्वसखिता पवन्दतांगं विनिमय्य दण्डवत् ऋग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन् निवार्भक चुम्बन् इवास्येन भुजेरिवाश्लिषन् तद्दर्शनेनागत साध्वसखिता भवन्दतांगं विनिमय्य दण्डवत् ऋग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन् निवार्भक चुम्बन् इवाश्येन भुजेरिवाश्लिषन्
वन्दताङ्गं विनिमय्य
दण्डवत्
ऋग्भ्यां प्रपश्यन् प्रतिबन्न चुम्बन् इवाश्येन
तद्दर्शनेनागतसाध्वसखिता
ऋग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन् इवार्भकस चुम्बन् इवाश्येन
भुजेरिवाश्लिषन्
दर्शनेनागत
शब्दार्थ तद्दर्शनेन भगवान का दर्शन करके आगत साध्वस अत्यधिक विभर ध्रुव महाराज खितो जमीन पर अबंदत प्रणाम किया अंगम शरीर विनिमय गिर करके दंडवत दंड के समान दृग्भ्याम अपनी आँखों से प्रपश्यन देखते हुए प्रपिबन पान करते हुए इव सदृश अर्भक बालक चुंबन चुंबन इव सदृश आशेन मुख से भुजे अपनी बाहों से इव सदृश आश्लिषन आलिंगन करते हुए अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को सम्मुख देखा तो वे अत्यंत विह्वल हो उठे और उनका सादर अभिवादन किया। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हो, उनके चरणों को अपने मुख से चूम रहे हो और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हो। तात्पर्य स्वाभाविक है कि जब ध्रुव महाराज ने श्री भगवान को अपने समक्ष देखा तो वे विस्मय एवं सम्मान के कारण विह्वल हो उठे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उनके सारे स्वरूप को अपनी आँखों से वो पी जाएंगे। श्री भगवान के प्रति भक्त का प्रेम इतना उत्कट होता है कि वह उनके चरणों को निरंतर चूमते रहना चाहता है, वह उनके नासाग्रों का स्पर्श करते रहना चाहता, उनके नखाग्रों के स्पर्श करना चाहता है तथा उनके चरण कमल को लगातार भुजाओं में भरे रहना चाहता है। भगवान को अपने समक्ष देखकर ध्रुव महाराज के शरीर में उठने वाले ये भाव उनके शरीर के आठ प्रकार के दिव्य आनंद को सूचित करने वाले हैं। ओम अज्ञानंतमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो ये ध्रुव महाराज के भगवत दर्शन की प्रसंग आप चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ध्रुव महाराज हमारे लिए एक महान आदर्श बाल भक्त हैं, जिन्होंने अपने उम्र के केवल 5 साल की अवस्था में ये भगवत साक्षात्कार किए। हम तो कभी स्वप्न में सोच भी नहीं सकते। 5 साल में तो हम ओआई में एडमिशन करते हैं, है ना? नहीं कभी सोच कर तो हमको अति आश्चर्य लगता है। धन्य है वो माता सुनीति, वो कैसे, आपने एकलौता बेटा था और राजकुमार था, आपने एक ही बेटा जो राजकुमार है उनसे घर से निकाल करके जंगल में भेज दिया। हम देखते हैं कहीं एक बेटे वाले माँ है जो इतने अटैच्ड है ना? नहीं अब ये देखिए जो नीतिवान माता है, ऐसे नीति है। अब उनके चरित्र में कई शिक्षा प्राप्त होते हैं, क्योंकि नीतिज्ञ है ना, सुनीति है। उन्होंने उत्तानपाद महाराज के ज्येष्ठ पाठ रानी थी सबसे पहले उनको, और उत्तानपाद महाराज के जो पहले विवाह मनु थे, वो मनुपुत्र थे, उनके विवाह तो कोई एरे गेरे से नहीं हुआ होगा ना, किसे हुआ होगा? कोई प्रख्यात राजपुत्री से, साम्राज्ञ के पुत्री से हुआ होगा। तो लेकिन वो नीतिवान थी सुनीति ने, उस स्त्री ने शादी करके आया, घर में रहा, राज पाटरानी बना, ज्येष्ठ पाटरानी। लेकिन राजा उत्तानपाद कोई और स्त्री से आसक्त हुए, वो भी राजकुमारी होगा कि पता नहीं क्यों भी, जो भी हुआ निश्चित रूप से वो और कुछ हो सकता है, क्योंकि सेकंड वाइफ कुछ भी कर सकते हैं, फर्स्ट वाइफ बिल्कुल रिचुअल के साथ पक्का राजकुमारी होगी, सेकंड वाइफ जो भी हुआ। तो उसको उन्होंने विवाह किए, वो रुचि संपन्न थी, वो सेंस ग्रेटिफायर थी, आपने इंद्रिय को तृप्ति करने में इतने सु एक्सपर्टिस था, इसलिए उनका नाम ही सुरुचि था। और उन्होंने इंद्रिय तृप्ति के मामले में इतनी होशियार थी कि राजा को आपने वेशभूषा, आपने भाव, आपने इससे इतने बस में कर लिया। राजा उत्तानपाद ने अपने बड़ी रानी ज्येष्ठ पाट रानी सुनीति को बिल्कुल देखना भी नहीं चाह। ये बात सुनीति माता स्वयं कहती है, रोती हुई बोल रही, मैं क्या करूं बेटा, तुम्हारे पिता महाराज उत्तानपाद तो मुझे एक दासी की तरह भी नहीं देखना चाहते। ये उनके बात है, मतलब वो झूठ नहीं बोलते हैं। जो उनके सेविका दासी थे उनको भी जो जिस प्रकार स्टेटस मेंटेन, उनसे भी नीचे कहीं पूछ नहीं रहते, देख नहीं रहते कोई खाए किस प्रकार। अब ज्येष्ठ पाटर आनी है, इसी दशा थी। आजकल कोई ऐसे अच्छे घराने वाले लड़की कहीं शादी किया होगा, अगर उसके पति उनके साथ दूसरी शादी करके ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या करेगा, उन्होंने क्या करेगी, फोन करके आपके पिता को केस तो ठोंकेगा ही, दूसरे दिन शादी कर ले बिना तलाक ले, और क्या क्या हाल कर देगा, है ना? नहीं लेकिन ये देखिए नीतिवान माता सुनीति ने एक बार उनके माता पिता भाइयों को कल भी नहीं किया होगा, नो सूचना भी नहीं दिया, सूचना दे हो तो एक्शन ले, तो बोले आ जाओ बेटे को लेकर हमारे घर में, हम कमी थोड़ी है, अपने मायके में रह सकते, छोटा बच्चा है और तुझे पति इतने निर्जातित कर रहा है, तुझे इस प्रकार स्थिति में है, आ जाओ, क्योंकि वो तो जरूर इतने बड़े महाराज की पुत्री होंगे, उनको क्या कमी होगा, एक बेटी को पालने के लिए उनके पोता को पालने को कमी थोड़ी रहेगा। लेकिन देखिए नीतिवान नहीं नहीं गई, खबर भी नहीं दी, वहीं रही निर्जातित होकर के, रोती थी बहुत, तड़पती थी, लेकिन फिर भी छोड़कर नहीं गई। अरे छोड़कर नहीं जाई, इतना नहीं, उनके बेटा ध्रुव के प्रति जिस प्रकार अपमानित किया गया राजभवन में, बेटा ध्रुव तो इस पहचान, छोटा बच्चा, उनको कोई ये कपटता तो था नहीं उसके अंदर, वो तो उसके दूसरी माँ की बेटा और उनका दोनों का उम्र सेम था, दोनों बिल्कुल 5-5 साल की उम्र, छोटे बच्चे जब खेलते हैं साथ मिल करके, एक बच्चा अगर उठकर यहाँ बैठता है वो भी बैठेगा, वो अगर कुछ करेगा वो भी करेगा, तुम क्या, मैं भी करूँगा। और दोनों साथ में खेलते थे राजा के आवास में, और दूसरा उत्तम ने जा करके राजा के गोद में बैठेगा, राजा बैठे थे अपने आसन, वो देखा बोला वो बैठेगा, मैं भी बैठूंगा, क्यों, उनके बेटा के तो पुत्र तो थे ना, उनके पिता के तो पुत्र थे। तो तो जेके राजा ने उत्तम को अपने गोद में बैठा लिया, ध्रुव ने सोचा मैं बैठूंगा जा करके, पापा पापा मुझे बैठाओ। पंजा उठाकर हाथ उठा करके जरूर पुकार करता होगा, कैसा निर्दय निष्ठुर पिता वो है, इसको नहीं नहीं उनका दिल तो तड़प रहा था मैं उठा के बैठा लूं, ये भी तो मेरा बेटा है, लेकिन क्यों नहीं उठा सकता था, क्योंकि इस घर में और एक तीसरा प्राणी भी थे जिनके चलते उठाने में डरता था राजा, क्योंकि वो उत्तम की माँ थी, सुरुचि ने थी, उनके प्रेजेंस ने राजा को इतने भयभीत करके रखा था, वो बिल्कुल चाहते हुए भी नहीं उठा सकता था, अपने बेटा था, उनको उठाकर अपने गोद में बैठने के लिए डर रहा था। और ये बात सुरुचि ने लक्ष्य कर ली कि राजा का हाल क्या है, और जैसे सुरुचि ने मोड़ के राजा की ओर देखा, राजा ने तो यस मैडम हम बिल्कुल देखता नहीं हूँ, बिल्कुल ऐसे वो कर रहा है, मैं आई हैव नो अटैचमेंट फॉर हर। तो सुनीतिल वाला राजा को कुछ बोलने से मतलब नहीं है, तो मेरे पूरे हैंडपैग है, मेरे हाथ में बिल्कुल बहुत बचा हुआ है, तो डांटने लगी बच्चा को, बोला तुम क्यों इसे कर रहा है, तुम यहाँ बैठ नहीं सकते, बोला क्यों, वो मेरे पापा है, भैया बैठा है मैं भी बैठूंगा, नहीं तू नहीं बैठ सकता, क्यों नहीं, नहीं तेरे पापा हो सकता है लेकिन मैं तेरा माँ नहीं हूं, तो केवल पापा के पुत्र होने से राज आसन में बैठ नहीं सकता, मेरे पुत्र बनना पड़ेगा। ध्रुव तो कुछ समझ में नहीं आता ये क्या नियम है भाई, उनके पुत्र हूं उनके गोद में नहीं बैठ सकता, उनको अटपटा लगा सुरुचि के बात सुनकर के, वो तो रो करके पापा को बोला पापा ये क्या बोल रहे हैं, प्लीज हेल्प मी। लेकिन महाराज उत्तमपाद तो इतने सुरुचि के वश में थे, ध्रुव का बात सुनकर भी, उनका ऐसे रोते हुए अवस्था को देख कर भी निर्दय निष्ठुर होकर चुप मार कर बैठे, ये है। ये उत्तमपाद का इस अवस्था केवल कामुकता के कारण था, स्त्रैण के स्वभाव के कारण, इतनी बड़ी गलती की उन्होंने, और वो तो डांटी डांट करके उनको तो क्या क्या बोली, अरे तू सास करते कभी नहीं बैठ सकता, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके सामने बाप बेटा दोनों को डांट करके सुरुचि ने उनको बताया कि अगर तू बैठना चाहते हैं तुझे उपाय बताता हूँ, हाँ बताओ कैसे करूँ, सीढ़ी लेकर चढ़ जाऊँ, नहीं नहीं चढ़ने से नहीं होगा, तुझे जाना पड़ेगा, भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, फिर दोबारा मेरे गोद में जन्म लेना पड़ेगा, तब जा करके मतलब तुझे मरना पड़ेगा, जन्म की जिंदा जिंदा जन्म नहीं हो सकता उनके गोद में, ऑलरेडी बेटा है उनके माँ के, उनके बेटा होने के लिए तो एक बार मरना पड़ेगा, तू जाके मरो और भगवत के पास मेरे बेटा हो गए तब जाकर होगा, नहीं तो नहीं जाओ मरो जाओ, ये भावना था उसका, ये भावना थी। तो ऐसा सुन करके तड़पते हुए बालक ध्रुव अपने पिता के सहायता के लिए कितने करुण क्रंदन किए होंगे, पुकार किए होंगे, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिला, विमाता तो इसने दुष्ट, ओ ध्रुव देख रहे होंगे कि उनके जो मित्र उनके भाई वो अपने पिता के गोद में बैठ कर दान दिखाते हैं, मुस्कुराते हैं, वो तो और जलन होता होगा, बोले देखो नहीं होगा ना, दोनों बेटा बालक करके खेलते होंगे, एक कुछ अचीवमेंट किया उसको नहीं मिला तो उसको दिखाया गया, वो तो और अपमानित हुए, निर्जातित अपमानित हो तो बालक क्या कर सकता, बालक का तो एक ही शक्ति है रोएगा, रोने पर भी कोई नहीं सुनने वाला था, इधर रो करके याद आया मेरे तो केवल माँ ही है, अपने माँ के पास रोते हुए दौड़कर, ये दासी राजघराने में ये बात देख रहे थे, वो ध्रुव दौड़कर आने से पहले आकर के माँ सुनीति को बताया कि इसे इसे चल रहा है तेरे बेटे के साथ। ध्रुव महाराज सुनीति के पास आने से पहले ही माँ सुनीति रोना शुरू कर दी थी, मैं क्या कर सकती हूँ, वो तो ऐसे ही करते हैं व्यवहार, मेरे साथ ऐसे किए लेकिन मेरे बेटे के साथ भी किए, तो उनका ही बेटा है, चलो मैं हतभागिनी हूँ, मुझे नहीं चाहते हैं, देखते नहीं, मुझे पत्नी के रूप में पसंद नहीं करना चाहते हैं, मैं ठीक में इसी के बैठी रहूँ, नौकरानी की तरह साइड होकर रहूँ, लेकिन ये बेटा तो उनका ही है, उनके प्रति भी ऐसे दुर्व्यवहार। इस सुन करके इस बात को माँ सुनीति ने रो पड़ी थी, लेकिन इस अवस्था में रोने को और बढ़ाने के लिए रोते रोते कांपते हुए दौड़ते हुए इससे क्रोधित हो रहे थे ध्रुव महाराज, जैसे कोई सांप के पूंछ पर कोई चढ़ जाए, कांपते हुए फुत्कार करते हुए रोते हुए बिल्कुल मुंह लाल पड़ा था दौड़ रहे थे। माँ माँ कर रोते रोते आए, माँ तो पहले से रोना शुरू कर दी थी। दोनों माता पुत्र का मिलन बड़े अद्भुत तरीका से होता है रो रो करके। दूर दूर से दास दासियाँ भी देखकर रोते होंगे, हाय हाय कितने अच्छे हैं, किस प्रकार है। लेकिन धन्य है माता सुनीति, रो रो करके उनको समझाने वाले, बेटा रोने से तो कुछ नहीं होने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है, तू मन में तेरे विमाता सुरुचि के प्रति क्रोध मत करो। देखिए फर्स्ट लेसन माँ सुनीति का, जो नीतिवान माँ होता है उनका मुख से सबसे प्रथम ही वाणी निकला, मेरे पुत्र ध्रुव आपके मन में जो क्रोध है, जो ईर्ष्या अमर्ष है तेरे विमाता सुरुचि के प्रति, वो बिल्कुल निकाल दो। उन्होंने जो आपको बोला ना बिल्कुल सही बात बोली है। उन्होंने बोला ना कि भगवान को उपासना करो, मैं बेटा यही बता रही हूँ, वो बिल्कुल सही बताए। भगवत उपासना करो, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना वो कुछ कर सकते, ना तेरा पापा, कोई नहीं कर सकते कुछ, एकमात्र भगवान ही सर्वसमर्थ है, जो कुछ मदद कर सकते हैं वही मदद कर सकते हैं। लेकिन ध्रुव अगर सोचा होगा माँ वो सुरुचि माँ तो बोला कि भगवान उपासना करके उनके बेटा बनने के लिए, नहीं नहीं बेटा उनके पुत्र बनेगा, छी 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 उनके पुत्र नहीं बनने का, भगवान को उपासना करो, इसी जन्म में तेरा जो इच्छा है सर्वपूर्ण हो जाए। मैं चाहता हूँ राजा बनूंगा क्या, मेरे बाप के जैसे आसन में बैठूं, वो मुझे बैठने नहीं दिया अपने आसन में, मेरे बाप से भी बड़ा, उनके बाप से भी बड़ा आसन में बैठना चाहता हूँ। माता सुनीति ने बोली सब हो जाएगा बेटा, उनके बेटा बनना नहीं पड़ेगा, मर करके उनके जन्म फिर उनके गोद में लेना नहीं, उनके इस कुसीद स्त्री में जन्म लेना नहीं, नहीं भगवत उपासना करके ना, भगवत उपासना का महाफल हो सकता है, जो तेरा इच्छा हो तभी पूर्ण हो सकता है, तत्काल पूर्ण हो सकता है। तो माँ सुनीति ने ऐसे उनको बढ़ावा दिया, भगवत्ता के भगवान की प्रीचिंग किया भगवान के बारे में, तो बेटा ध्रुव बिल्कुल आश्वस्त हो गया। तो सोचने लगा तो फिर क्यों लेट कर रहा हूँ, जब यही काम है, यही काम करने से मेरा काम होना, क्योंकि क्षत्रिय पुत्र था ना, क्षत्रिय पुत्र को अपमान के बदला लेने के लिए बिल्कुल रक्त खोल रहा था उसका। बोला माँ लेट नहीं करना है, बताओ भगवान का आईडी प्रूफ, वो एड्रेस कहाँ है, मैं आज ही जाऊँगा, आज जाकर बात करूँगा उनसे, वो जो काम बनेगा तो आज ही जा रहा हूँ, लेट क्यों करूँ, सुबह तो नाश्ता कर लिए होंगे, खेल रहा था, 10 बज गया होगा, मैं अब भी चलूँगा, क्योंकि छोटा बच्चा है उसको क्या पता है। भगवान क्या कैसे बोला कि कम दूसरे कमरे में बैठे होंगे, कुछ किया होंगे, कुछ बैठ जाऊँगा, तब जान तो फोन था नहीं कि फोन पता कर लूँगा कुछ करना। तो माँ ने बताया बेटा मैं तो इतना ही जानती हूँ कि भगवान तो जंगल में रहते हैं, सब ऋषि मुनि जंगल में ही जाते हैं, वो वनचारी हैं, जमुना तीर वनचारी, उस जमुना के किनारे वृंदावन जैसे वन में रहते हैं। अच्छा वन में रहते हैं, वनवास जाता हूँ। 5 साल का राजकुमार, आप क्या सोचते हैं जंगल कब गया होगा, तब जो ना टीवी भी नहीं दी होगा, इसमें भी देखा होगा जंगल, जंगल है कैसा उसका कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं हुआ होगा। लेकिन उसको अनुभव से क्या मतलब, मैं जाऊंगा जंगल ही जाऊंगा, मुझे बताओ रास्ता क्या है, जंगल बाहर से वो देश से बाहर जंगल पहाड़ वहीं पे जंगल होता है, वहीं पे जाके पता लगाना, वो मिल जाएंगे भगवान। वो बोला ओके मैं अभी चलूंगा, अभी चलूंगा करके तुरंत अस्वस्थ हो गया, आंसू पोछ लिया आंख से, तुरंत चलने के लिए तैयार हो गया माँ के गोद से निकल कर। माता ने कुछ उनको और भी साहस दिया कि बहुत अच्छा है, निश्चित आपका सफल काम होगा, भगवान के बारे में बता। तो तुरंत निकल पड़ा, 4 स्टेप आगे जा करके माँ को मोड़ करके देखा, रोती हुई माँ देखता है। अब सोचिए इस प्रकार अवस्था में एक माँ जो बेटा को विदा करते थे, अब जो ये जो विदा कर रही थी माँ सुनीति ने, उसको तो पता होगा कि वे 2-4 दिन में वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ था, कोई होप था उसका वापस आने का, होप था, क्या होप हुआ होगा उसका। सुनीति माँ ने जब विदा कर रही थी अपने बेटे को, क्या मन में सोचती होगी, हम लोग 2 दिन के लिए ट्रैवलिंग में जाते हैं, 3 बैग उठाकर चलते हैं, जानते हैं 2 दिन में आ जाऊंगा, यहां भी व्यवस्था है, फोन करके रखें व्यवस्था है इधर, फिर भी लगेज लेकर चलते हैं। बालक ध्रुव जब जा रहे थे जंगल में, उनका कोई गेस्ट हाउस बुकिंग था, कोई व्यवस्था था, एक गामछा तक उठाकर नहीं ले रहे थे, कुछ भी नहीं ले रहे थे, जो परिधान पहने थे बस आज इट इज निकल पड़े थे। वो तो बालक है, उनके बुद्धि विचार नहीं, लेकिन उनको माँ ही तो थी। वो तो बालक के लिए सब कुछ है, उनको खिलाती पिलाती नहनाती पहनाती एवरीथिंग, सी इज द होल सोल केयर टेकर। वो क्या नहीं देना चाहती, बेटा ये भी ले लो, रात में कहाँ सोऊंगी, एक बेडशीट तो ले लो, एक ये तो मच्छर लगेंगे, मच्छरदानी तो ले लो, कुछ कर लो, पानी के बटल लेके ले लो। वो भी कुछ भी नहीं दी और उल्टी उनको बोले बेटा जा। लेकिन बालक ध्रुव चार कदम चल करके माँ को और मोड़ को देख, बोले माँ अभी दो घंटे के बाद तो भूख लगेगा, अभी भूख लगना शुरू हो रहा है, कैसे खाऊंगा, आप तो नहीं जा रहे साथ में मेरे। ध्रुव जी शायद सोचे होंगे मैं जाऊंगा तो माँ मेरे साथ चलेगा, क्योंकि अब तो खिलाना पिलाना नाला सब कुछ माँ ही कर रहा है, उनको तो कुछ विदाउट केयर बिंदास। बोले अब तो मैं अकेला जा रहा हूँ, माँ तो नहीं आ रही है। तो मोड़ कर देखे माँ की ओर, बोले माँ आप नहीं आ रही है, मुझे भूख लगेगा अभी तो। देखिए सुनी थी माँ की बात, बोलते बेटा ध्रुव मैं तुझे क्या केयरटेकर करूंगी, केयरटेकर करूंगी मैं, क्या खिलाऊंगी, क्या सुलाऊंगी, क्या करूंगी। तू जिनके पास जा रहा है ना, जिनके आशा लेकर के, जिनके भरोसा लेकर जा रहा है, मैं तो इतना ही जानती हूं, सुनती हूं बड़े बड़े लोगों से कि एक माँ का एक बेटे के प्रति जितने स्नेह जितनी ममता, जिस प्रकार के उनके रक्षण बेखण का दायित्व जो क्रिया होता है, उससे कई करोड़ों गुना अच्छा से वो कर सकते हैं। इतने बच्छलता भाव उनका है, हमारा अंदर क्या है, हम एक बद्ध जीव है, एक ऐसे गुड फॉर नथिंग, किसी प्रकार की समर्थता नहीं है। ऐसे एक माँ आपके पुत्र देख रहा ना, तू भी रो रहा है, मैं भी रो रही हूं, कैन डू एनीथिंग, इस प्रकार के भारी अपमान, मैं भी राजपाट रानी हूं, आप भी राजकुमार है, कर क्या सकते हैं रोए के बिना। तो केवल खिला पिलाने से क्या, फिर रो के रोएंगे बैठेंगे दूसरे सेकंड शिफ्ट में, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं भी अपने छाती में पत्थर रखकर सहन करना चाहती हूं, बेटा तू भगवान के शरण में जा। अगर ध्रुव मन में प्रश्न उठा कि माँ तुम कहीं भगवान के शरण में नहीं जाती हो, बोला मेरे शरण तो मेरे पति हैं, वो मुझे जिस प्रकार मेरे से करेंगे यही नीति है, बस इस जीवन में यही है। तो इस प्रकार उन्होंने गई नहीं, ना तो आपने मायके को फोन किया कि गई, ना बेटा के साथ गया, वहीं रहे और बेटा को भेज दिया, जंगल में भेज दिया। अब हम लोग सोचने से तो हमको लगता है दर्द, अब वो कैसे होंगे, एक ही बेटा तो था उनका, कैसे भेजा उनको। आजकल तो चार चार बेटे हो तब भी भक्ति करने के लिए बोलते नहीं 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 बाबा जी बन जाना ठीक नहीं। अब ये बताओ कौन प्रीचिंग किया था उनको, कोई नहीं कहते, उनके माँ ने जबरदस्ती भेज रहा, जो गो, अरे कोई जाकर व्यवस्था है, कोई आश्रम है जाकर रहेगा, ठीक ठाक खान पान होगा, कुछ भी नहीं है, जंगल में भेज रही है। छोटे से बालक जंगल में हिंस्र जंतु होंगे, क्या होगा, किस मुहूर्त में बिल्कुल जीवन खत्म हो जाएगा, कुछ भरोसा है। लेकिन फिर भी इतने भरोसा था सुनीति माता के भगवान के ऊपर, और इतने भरोसा दिलाया अपने बेटे को, तो बेटा बोला ठीक है। अब माँ ऐसे कहते हैं कि वो मेरे देखभाल करेंगे, आई एम गोइंग, नाइस गो, विदा कर दिया उनको, चल पड़े बालक ध्रुव। ध्रुव का ऐसा निर्णय, ऐसा दृढ़ता कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं इतने बड़े पोस्ट लेने के लिए, उनसे बातचीत करके इतना सच्चा निर्णय, और आपने नीतिवान मां की जो उपदेश, जो प्रीचिंग, ये भगवान को हिला दिया वैकुंठ में। भगवान ने तुरंत अपने एजेंसी भेजे, ध्रुव महाराज नहीं गए थे नारद जी के पास, ना फोन में किए थे पता के थे नो, वो तो अपने आश्रम जंगल के कुछ निकल रहे थे, राजभवन से निकल पड़े थे, बाहर आउटस्कर्ट में गए होंगे, नारद जी दौड़ कर आए, नारद जी वो दौड़ करके आए, उनको भगवान ने बताओ गो दे यार ये कैसे प्रॉपर कैसे उनको जाके टिकअप करो। तो दौड़ के आए, आकर नारद जी आकर साक्षात की ध्रुव को। ध्रुव बालक क्योंकि नीतिवान माँ के बेटा है, जरूर कई बार नारद जी उनके राजभवन में आए होंगे, उत्तानपाद के भवन में आते रहते होंगे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आते रहते होंगे। तो माँ ने उनको ये शिक्षा दी थी कि जैसे घर में कोई साधु संत ऋषि महात्मा आए तो उनके चरण में प्रणाम करना, उनके आशीर्वाद लेना, उनसे कुछ सुनना, उपदेश वाणी जो बोलेंगे, ये शिक्षा उनको पहली सी थी बालक ध्रुव को। तो जैसे नारद जी को आते देखा दूर से, तुरंत जाकर चरण में गिर के प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, और करके नारद जी कुछ बोलने से पहले अपने से बोला, मेरे देव ऋषि नारद जानता था, नारद जी अब तो मैं जा रहा था मेरे प्रोजेक्ट में, लेकिन घर से निकलते आपके भेंट हुआ, मेरा सुमंगल होगा, निश्चित में सफल काम होगा, ये तो मेरा पूरा भरोसा होगा। आप जैसे महात्मा सबसे पहले ओपनिंग में दर्शन हो जाए तो फिर क्या डर है मेरा। नारद जी को पता नहीं ये क्या कर रहा है, मुझे फंसा रहे तेरा प्रोजेक्ट क्या है भाई, ना इसी से मैं जा रहा हूँ भगवान के पास, क्यों छोड़ के जाए तू बेटा है, तू क्यों जा रहे घर छोड़ के राजभवन छोड़। तो ध्रुव ने बताया इसे इसे मेरा झगड़ा होगा, मतलब इसे घटना हुआ है, पापा के साथ मेरा अनबनी हो गया, ऐसे ऐसे हुआ, सब बोल दिया ध्रुव। नारद जी सुन करके बोले, अरे बेटा तू 5 साल का, तेरा क्या गुस्सा अपमान क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं वो रूठ जाते हैं, 2 घंटा में चॉकलेट दो फिर मिट जाते हैं, इतना तो होता है उनको, रूठ रूठना होता है कितना, रो पड़ेंगे चिल्लाएंगे खूब रूठ मूठ करके मुंह मोड़ कर खाएंगे नहीं, आधे घंटे में कुछ चीज़ दे दो फिर मिट जाएंगे, उनका कितना देर का होता है गुस्सा और उठना अभिमान। लेकिन तू भी तो एक बालक है 5 साल का, ये सब क्या, चलो मैं अभी उत्तानपाद को बोलता हूँ तुझे गोद में बैठा देगा, क्या बात है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो मैं भी बताता हूँ उसको, डांट देगा ठीक हो जाए। लेकिन ध्रुव तो ऐसे कोटि के थे नहीं, नारद जी समझाने लगे, तेरा क्या है सब, चलो मैं बताता हूँ, और इस प्रकार के उपदेश देने लगे, अच्छा नहीं चलो तू जंगल में जा रहे, पता है जंगल के बारे में कितने खतरनाक है जंगल, बड़े बड़े शेर भालू होते हैं, हिंस्र जंतु कभी खा जाएंगे तुझे, कहाँ रहेगा क्या खाएगा कैसे, कुछ नहीं, यहाँ घर बाड़ी नहीं होता, इतने जंगल में भयानक जंगल का जो कष्ट के बारे में बताने लगे। ध्रुव महाराज सब सुनकर भी जैसे उनका कुछ नहीं घुस रहा था कान, बोले बोले नारद जी देखिए अगर मुझे हेल्प करना चाहते कुछ बोलो, नहीं तो अपना रास्ता पकड़ो, आपका उपदेश तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरे से कोई काम का नहीं। बोले क्यों, बोले एक तो मैं क्षत्रिय हूँ और बदला लेने के लिए तरसता हूँ, और वो दूसरे मेरे हृदय को मेरे विमाता सुरुचि के कटु वाणी ने छेद कर डाला है, होल कर डाला, उसमें कई होल हो चुका है, और आपके उपदेश सब निकल जाता है उसमें, टिकता नहीं क्योंकि छेद है उसमें, आपके वाणी से निकल जाता है, तो इसलिए आपके उपदेश कोई ब्राह्मण बालक को दो तो काम करेगा, मेरे से छेद हुआ है हृदय में, मेरे से टिकेगा नहीं आपके उपदेश। नारद जी बोले बाप रे बाप, ओहो क्षत्रियाणांग महातेज, ऐसे तेज है क्षत्रिय, इतने ढीठे ध्यान नहीं चाहता कुछ। बोले तू मर जाएगा, बोले बस मरना तो है उसमें क्या है, ये अपमानित होना मरना ही है, माँ भी मुझे छोड़ दिया तो आप क्यों मुझे छोड़ते हैं। तो नारद जी बोले बिल्कुल पक्का सिलेक्टेड आदमी है, हर परीक्षा प्रकार से परीक्षा लेकर नारद जी देख ली, बिल्कुल खर्रा निकला उनने, तब उनको उपदेश दिए। नारद जी का ध्रुव को जो शिक्षा वही जंगल में अंधी हुए रास्ते के ऊपर कोई पीपीटी का व्यवस्था नहीं था कि कोई बैठने का व्यवस्था, कोई हॉल, कोई क्लासरूम, कोई रूम, कहीं प्रीचिंग करने का कोई नथिंग, अंधी रोड, अंधी वे टू जंगल, जंगल जाने के चलो रास्ता के ऊपर ये जो टीचिंग्स दिए नारद जी ने ध्रुव को, इतने डिटेल भगवान के शिक्षा दिए, मंत्र दान के, दीक्षा शिक्षा सब कुछ वहीं दे दिए रोड के ऊपर। प्रभुपाद जी ने तो पूरे ध्रुव चरित्र एपिसोड में कहते हैं कि ध्रुव महाराज का जो ये सफलता, ध्रुव महाराज का जो भगवत दर्शन, ये सबका पीछे एक ही कारण है, एक ही कारण है। आप तो कई कारण बता सकते हैं, अपमानित हुए माता इसकी, यो माता उपदेश दी, ये वो इतने घोर तपस्या किए, उनका इतने दृढ़ता थी। प्रभुपाद बोलते नो, ओनली वन रीजन। ध्रुव महाराज के सफलता के पीछे केवल एक ही कारण था, वो था कि नारद जी के साथ उनका भेंट। अगर नारद के साथ भेंट नहीं होता, क्या पता ध्रुव का क्या होता। ये है इसी को प्रभुपाद ने गुरुपादाश्रयम, उनको गुरुपाद आश्रय हो गया। वो आश्रय हुआ तो जीवन में सफलता उनका हो ही गया, अब असफल होने का कोई चांस नहीं रहा। कोई सदगुरु का आश्रय मिल जाए तब फिर जीवन का पूर्णता प्राप्त हो ही जाएगा। इस बात को आचार्यगण कहते हैं। तो नारद जी मिल गए थे, तो इस प्रकार टीचिंग्स दिए, उनको मंत्र दिए। इस टीचिंग्स आप पढ़ेंगे उसमें भगवान की रूप का इतने निखुण वर्णन किए हैं, नख से लेकर के सीख पर्यंत एक एक अंग उपांग प्रत्यंग का निखुण वर्णन किए हैं। ध्रुव जी को तो पता तो था नहीं, कि फोटो भी नहीं देखते तब, तो कैमरा वैमरा होता नहीं था। तो इसीलिए नारद जी जानते थे ये बालक जाएगा भगवान के पास, जाता है भगवान जानते नहीं कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं देखने के लिए, उनका रूप आकार विकार कुछ नहीं जानता बेचारा लड़का है 5 साल का। तो इसलिए उनको पूरा ठोस समझ देना पड़ेगा। तो ठोस ज्ञान दिए उनको, भगवान देखते हैं कैसे, उनका अंग प्रत्यंग रूप आकार विकार सब कैसे, स्वभाव कैसा है, सब कुछ स्वभाव रूप स्वरूप सारे डिटेल ज्ञान दिए उनको, समझाए। और वो बोले कि जा करके तू ये रूप बनाना, अब वृंदावन जाओ, वहाँ लोही बाजार से अगर मिलेगा तो डीटीए खरीद लेना। अगर लोही बाजार तो था नहीं, तो कम से कम जमुना से पानी और मिट्टी लेकर के मैं जो साइज बताता हूँ इसी हिसाब से एक स्वरूप बनाना, एक विग्रह बनाए थे ध्रुव जी ने। बोले पहले ही बनाना, विग्रह उपासना के बिना सिद्ध नहीं होगा, घर बैठे बैठे मनमानी ध्यान मुद्रा से इससे कुछ नहीं होता। बोले विग्रह के बनाना, मिट्टी और पानी लेकर के मैं जैसे बताता हूँ इस प्रकार बनाना, और उसको ऐसी पूजा करना, पूजा विधि भी बताए। बोले जंगल में तो मार्केट से मिलेगा नहीं, ला करके बढ़िया सा बना राजभोग लगाएंगे। बोले कुछ नहीं, जंगल में जो भी फल मूल मिल जाएगा पानी लेकर के इसे जल तुलसी से उपासना करना चलेगा इसमें भी, लेकिन करना है, यही विधि है। ये सारे शिक्षा देकर अंत मंत्र भी दिए, मंत्र प्रभाव दिए, और उनको बोले तू वृंदावन जाओ, गच्छ मधुवनंग मधुवन में जाओ, जत्र नित्य सन्निहितो हरि, जहाँ हरि हमेशा रहते हैं इस मधुवन में जाओ। और उनके दीक्षा शिक्षा डिटेल प्राप्त करके, उनके कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करके, नारद जी जैसे सदगुरु के, ध्रुव महाराज चल पड़ते हैं वृंदावन की ओर, और जा करके मधुवन में पहुंच करके जमुना जी में स्नान करते हैं। आज से लाखों साल पहले की बात है, आजकल तो वृंदावन की अवस्था खराब है, तो तभी कितने रमणीय स्थान था, कितने रमणीय स्थान था। स्नान करके अब वन में जा करके अब एक निष्ठ गुरु शिक्षा को ध्यान करके भजन निष्ठ हो गए, बैठने लगे। उनका जो ध्रुव जी का जो तप का वर्णन भागवत में है कि अलग अलग महीना में, एक एक महीना में कितने वो बढ़ाते गए उनके तपस्या का, आप लोग पढ़े होंगे डिटेल, कितने स्ट्रिक्ट कितने कठोर तप किए छोटे से बालक होकर के, खाना पीना तक छोड़ करके एक एक महीने में। हम लोग तो दिन में 3 बार खाते हैं, और 3 दिन में 1 बार खाना शुरू किए। उनका शुरू हुआ इस ओपनिंग 1 time in 3 days, और हमारा 1 day 3 time, ये उनका शुरुआत हुआ था। यही से शुरू करके अब 6ठा महीना हुआ कि नहीं, भगवान को तो एड्रेस पूछ कर आना पड़ा। भगवान सर्च किए होंगे कहाँ है वो, कौन सा पेड़ के नीचे खड़ा है। देवता गंधर्व यक्ष राक्षस सब लोग थर थर कांप गए, सबका सांस रोक दिया, उनका नाक चोक हो गया, सांस बंद कर दिया सबका। दौड़े बोले मर जाएंगे सारे, ये क्या हो रहा है। भगवान बोले अच्छा अच्छा मैं जा रहा हूँ। भगवान को जल्दी में आना था, लेकिन सारे संसार नाश हो जाएगा, सब सांस बंद हो गया सबका। भगवान अपने गाड़ी लेकर के स्पीड में आए मधुबन में, वो आ करके उनके ध्रुव खड़े थे, वो आंख बंद था उनका, क्योंकि तभी तक उनका इतने तल्लीनता आ चुका था, भगवत ध्यान हो चुका था, बिल्कुल யங் பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ர மருத்தஸ்தன்வந்தி திவ்யஸ்தவேர் ரிபேதே சாம பத கிரமபனிஷதேர் காயந்தி யங் சாமகா தியானாவஸ்தித தத்கதேன மனசா பசியந்தி யங் ஜோகினோ யஸ்யந்தம் ந விதுஹு சுராசுரகணா தேவாய தஸ்மை நம. उस ध्यानावस्थित उस ध्यान मुद्रा में अपने हृदय कमल में वही मूर्ति को जिसकी उपासना कर रहे थे आज देख रहे हैं, उसके लिए आँख खुलना नहीं पड़ेगा, अंतर्मुख हो चुके थे. हमारा इंद्रिय में सब बाहरी चीज को देखते हैं, भगवान तो अंतर्जामी है, अंदर बैठे हैं. तो अंतर्मुख हो चुके थे, आँख बंद करके बिल्कुल दर्शन कर रहे थे इस मूर्ति को, उस विग्रह को दर्शन करते थे, मंत्र मूर्ति को. अब वो तो अंदर से बंद है, सांस फांस ले नहीं रहे, अपने सांस प्रश्वास बंद करके एक पैर में अंगूठे में खड़े होकर के अभी इतने तल्लीन होकर देख रहे हैं कि शरीर का ध्यान नहीं उनका, कुछ भी नहीं, दुनिया भाड़ में जाए उनको क्या हो, तो भगवत दर्शन कर रहे हैं, इतने प्रेम से देख रहे थे. तो सारी दुनिया सांस लेने के बारे में मर रहे हैं, वो तो मस्ती में खड़े को भगवान दर्शन कर रहे हैं, रूप बिल्कुल साक्षात कर ध्यान में अपने अंदर में देख रहे हैं. भगवान बोले उसे जाकर के बंद करना पड़ेगा ना, समझ जाएंगे सबको घुटना बंद हो रहा. भगवान ने अपने गाड़ी से हाई स्पीड में आए, गरुड़ जी से आकर उनके सामने पार्किंग किए, लेकिन ये काहे को देखे, वो तो आग बंद करके. भगवान बोले देखो मैं वैकुंठ से ऑल दी वे यहाँ तक आया, कितने दूर से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर आया, हाँ मुझे रिसीव भी नहीं कर रहा. भैया बताओ ना, कोई आप इतने दूर से आएंगे, आप घर में कोई पूछेंगे रिसीव नहीं करेंगे, आप खड़े आकर घर में नोबडी इज देयर टू रिसीव यू. ध्रुव महाराज आंख खोलते भी नहीं, देखते भी नहीं उनको. भगवान तो जानते हैं सर्वज्ञ, बोले अरे आप मुझे देखेगा कैसे, वो तो दूसरा देख रहा है, अंदर देख रहा है, अंदर के स्विच ऑफ कर दिए. वो स्विच केवल उन्हीं को पता है, हम लोग पास है नहीं, वो जानते हैं स्विच का, स्विच ऑफ कर दिए, दर्शन बंद हो गया, सीन अप. ध्रुव महाराज तो बेचैन हो गए, विकल हो गए, विकल होकर आंख खोल दी, कहां हो गए, क्या हो गया. आंख खोल दिए तो जो रूप को अभी तक देख रहे थे अविकल, वही रूप सामने खड़ा है. सबसे पहली बार उनके जीवन में 5.5 साल की उम्र में सख्यात भगवान के दर्शन हुआ, जिनका फोटो ही पहले नहीं देखे थे, सुने थे अर्चा विग्रह खुद बनाए थे, लेकिन अभी कड़ा साक्षात भगवत दर्शन हो जाए. जो जो नारद जी के मुख से सुने थे, कैसे उनके आँख, कैसे उनके अंग, कैसे उनके रंग, कैसे उनके वर्णन, सारे को सारे डिटेल, जैसे अविकल वही दिव्य रूप भगवान खड़े हैं, चतुर्भुज शंख चतुर, बिल्कुल नारद जी ने टिटपिट बताया वही सामने है. ये श्लोक में ही बताते हैं, फर्स्ट टाइम इन 5 years and 6 months एज, जंगल के अंदर भीषण निर्जन स्थान में हठात विकल होते कर आंख खोल दिए, देखते अरे अगर हम लोग भी ऐसे स्थिति में होते हमारा भी हाल खराब हो जाता. कभी नहीं देखे थे, वही सुने थे, चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, अभी सामने ही प्रकट है. भगवान कितने कृपापूर्त, कृपापूर्ति नयन में मुस्कान के साथ दिव्य रूप उनके सामने, कितने कृपा करके छोटा सा बच्चा है, कितने स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, मुझे खींच लाया वैकुंठ से. भगवान कितने प्रसन्न बदन से उनको देखते होंगे, लेकिन ध्रुव तो व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए इस रूप को देख करके. अब अभी तक तो एडमिशन नहीं हुआ था कि कुछ प्रेयर स्तुति करते, भाषा ज्ञान भी नहीं था, ठीक से पढ़े लिखे नहीं थे, तो इतने केवल माँ से सीखे थे, संस्कार था घर में कि कोई ठाकुर मंदिर में जाओ कि ऋषि मुनि कोई साधु संत को जाओ, उनको प्रणाम करना चाहिए, तो धड़ाम करके गिर के प्रणाम किए. इस श्लोक में कहते हैं तद दर्शना आगत साध्वस, उनके दर्शन कर करके सामने साध्वस इतने विह्वलित हो गए, इतने विह्वलित हो गए कि खित्वाम धरती के ऊपर वंदना करने के लिए हाथ जोड़ करके, उनके प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ करके, विनम्य दंडवत, दंडा जैसे गिरता है, आपने आप को धड़ाम करके गिराए. हम लोग तो दंडवत करते हैं, एक हाथ लगाते हैं दूसरे हाथ लगाते हैं, बड़े घुटनों को टिकाते हैं, ये गिरना ऐसे होता है क्या? दंड बत, बत मतलब ई मतलब सदृश, दंड जैसा ऐसे खड़ा ऐसे गिर के धड़ाम। दंड पहले से कोई ये हाथ पर लगाता है को टिका सपोर्ट कुछ लेता है क्या? लेकिन हम कैसे करते हैं बिना सपोर्ट में? पता नहीं चोट लग जाएगा यार, सर में लग जाएगा, नाक फट जाएगा, है ना? हम लोग तो अभी तक तो कोई दंडवत किए ही नहीं, कर ही नहीं सकते। दंडा जैसे गिरेंगे किसी इंजर्ड हो जाएंगे, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा फिर तो। क्योंकि हमारा अपना शरीर की चिंता रहता है, देहा ध्यास है, तो दंडवत करने का सामर्थ्य हमारा है ही नहीं। हम बोलते हैं कि दंडवत नहीं करना, आजकल फोन दंडवत, अरे फोन में सब दंडवत तो गिरना होता है, फोन में वाणी में पूरा भी उच्चारण नहीं करते, शब्द ऐसे दंडवत मारते हैं आजकल। मैं देखता हूँ कई भक्त लोग को मिलते हैं, वांछा हो गए, वांछा कल पत्र शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, पूरा कौन बोलता है इतने टाइम, वांछा हो गया बस हो गया। अरे वांछा होता है क्या है? सब इतने शॉर्टकट में चलते हैं। लेकिन उन्होंने, उनका तो शरीर को ध्यान ही नहीं था, मैं शरीर हूं करके था नहीं उनका, तो इसलिए सचमुच डंडा जैसा गिरे उन्होंने, राम करके गिरे होंगे, कोई उनका चिंता नहीं होगा मेरे नाक फट जाएगा, सर फट जाएगा, जुखाम घुटना में चोट लगेगा, कि जंगल है यहाँ कोई अच्छा फर्श बिछा थोड़ी होगा, पत्थर चट्टान होगा कुछ होगा। लेकिन इसमें ऐसे गिरे कि शरीर शुद्धि तो था नहीं उनका। जब भगवान उनको केयर टेकर करने के लिए सामने खड़े हैं तो धरती में पड़ेंगे, धरती तो पता नहीं सबसे मुलायम, क्या बोलते हैं उसको, स्पंज से भी और मुलायम हो जाएगा। भगवान इतने वत्सल्य थोड़ी उनको कष्ट देने देंगे। जब भगवत चिंता है उनके लिए तो वो क्यों अपना चिंता क्यों करें? परम पिता स्वयं आया है इतनी दूर से, तो धड़ाम करके गिरे। एक बार नहीं, विनिमय बारंबार गिरते थे, उठते थे, फिर दिखते थे, कुछ बोलना नहीं बनता था उनसे। कुछ बोलना चाहता हूं प्रभु लेकिन बोल नहीं पाता हूं, आंख से धार धार आंसू बह रहा था, पूरे शरीर से कंप कंपी आ गया था, नयनम गणदस्रु धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा, ये स्थिति आ गया। कुछ बोलना चाहते थे कि प्रभु ठाकुर जी, और कुछ स्तुति तो जानते नहीं थे तंत्र मंत्र, लेकिन वो भी बोला नहीं जाता था, गला चोक हो गया, आंख से धार धार आंसू बह रहा था, पूरे शरीर पुलकित रोमांचित हो गया, कंप कंपी मच गया, ऐसे सात्विक विकार हो गया शरीर में। बारंबार उठते थे, चरण को पकड़ करके देखते थे, सोचते थे मैं छूं कि ना छूं, क्या करे, इतने दिव्य भगवान के शरीर तो, इतने सुंदर, इतने तेज निकलता होगा, इतने सुगंध निकलता होगा, चतुसन जैसे सुगंध निकलता होगा। हम लोग तक कोई एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, ना जानते ना कभी देखे, लेकिन जो थोड़े बहुत सुने हैं इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, और क्या करें, ये मूढ़ मति से और हो क्या सकता है। हम भागवत में दसवें स्कंद में इसे वर्णन आता है, जहाँ ब्राह्मण पत्नी, यज्ञ करने वाले जाज्ञिक ब्राह्मण की पत्नी, वो पीछे दरवाजा से भोजन लेकर के जब जंगल में चले गए कृष्ण बलराम को मिलने के लिए, कृष्ण बलराम खड़े थे एक लड़के के, अपने एक दोस्त के कंधे में हाथ दे करके कमल फूल लेकर घुमाते, खड़े हुए, आइए, हीरो की तरह खड़े थे। अब वो यज्ञ पत्नियाँ, ब्राह्मण पत्नियाँ उनको देखे, वहाँ जो वर्णन आता है वो कैसे देखे, क्योंकि इतने सुने थे वो पत्नियां ने, ब्राह्मण लोग तो अपने पूजा पूजा कर्मकांड में बिजी रहते हैं, लेकिन ये स्त्रियां जो चूड़ी बेचने वाली आती थी, मसाला बेचने वाली आती थी, दही बेचने वाली आती थी, ये तो सब सिटी है ना, गांव में सब गांव के लोग जो आते थे, वो बेचने वाली, जो बेचने वाला, उनके मुख से केवल कृष्ण लीला के कथा निकल रहा था। बोले मैया क्या बताऊँ, आज तो गोवर्धन लीला ऐसे हुआ, दूसरे दिन आ तो काली लीला ऐसे हुआ, आज तो धन के बाद आते ये उधार, ऐसे सुन सुन करके उनका मन में इतने हार्ड डिस्क फूल हो चुका था, देखने के प्रबल लालसा था। आज जिसे पता चला बाजू में आए हैं कृष्ण बलराम, तो उनको रोके कौन, यहाँ घंटी बजा करके पानी डाल करके पत्तल बिछा बैठे हैं, ये प्रसाद ला रहे हैं, थाली लगा रहे थे, पति लोग बैठे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं, आएगा भोग लगाएंगे, और पीछे भाग गए प्रसाद लेकर। और जाकर साक्षात जो इतने सुने थे आज इस रूप को जब देखे ब्राह्मण पत्नियां ने, यही वर्णन सुबह वर्णन वहां भी है, देख करके ब्राह्मण पत्नियां दूर से अपने आंख से भगवान के रूप को अंदर ले लिए, हृदय ले करके हृदय में रखे अपने अपने हृदय में इंडिविजुअल। कितने ब्राह्मण पति, एक थोड़ी थे, कई थे, सभी ने एक रूप को अपना अपना हृदय में ले लिए, पूरा डाउनलोड कर दिए, सीधा भगवान को हार्ड डिस्क में डाउनलोड कर दिए सीधा। वो छोटा सा चिप्स था आंख, आंख डाउनलोड कर दिए, डाउनलोड करके बोलते नहीं अब पी जाए चाट जाए, आलिंगन कर ले, ये जैसे सब जो कोई अति आत्मीय, अति प्रेमास्पद, अति स्नेहास्पद कोई चीज आपको मिल जाए तो आप, यही सब क्रिया होता है। हम लोग भी हुड़बक को यही सही होता है, जब कभी 20-25 साल के बाद आपके कोई छोटे बहुत लाला की कोई कि कोई बड़े दिन के बाद में आप जिनके बारे में इतने तड़पते थे, ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, वो मिल गए हठात, आप कैसे उनको ऐसे मिलेंगे, उठा कर गोद में लेंगे, चूमेंगे, चाटेंगे, कुछ भी कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार भगवान के प्रेम से इतने पूरित हो गया बालक हृदय का ध्रुव हृदय कि ये सब क्रियाएं करते रहते हैं। ध्रुवभ्यांग प्रपश्यन प्रपन ईव इबार्भकम, अर्भक मन बालक वो पी जाना चाहता है, दृग मतलब नेत्र। हम लोग तो अभी तक यही हमारा अभिज्ञता है, पीना तो मुख से होता है, देखना आंख से होता है, बोलता है ध्रुवभ्यांग मतलब आंख से क्या प्रपिबन, आंख से पीने लगे, क्योंकि भगवान के रूप तो मुंह से पिया नहीं जा सकता, लेकिन इतने सुंदर था, इतने महा आकर्षक था, तो उनको पीने के और कुछ रुच नहीं रहा था, बोले पी जाऊं उसको, पिए आंख से पी गए। प्रपिबन इबार भक और चुम्बन, बोले पीने से काम नहीं हुआ, चुम्बन किस करना चाहते थे, प्रपद बोलते हैं उनके चरण को, चरण जुगल इतने सुंदर था उनको चुम्बन करना चाहते थे, केवल चुम्बन नहीं आलिंगनम भुजेर आश्लिषम, आपने बाहों में लेकर के चाहती हूँ ऐसे घंटों आलिंगन करते रहूं, ये भावना से भगवान के चरण जुगल को हृदय में लेकर के वहीं धरते रहूं भरते रहूं, इस प्रकार के भाव हठात उदय हुआ उनके मन में। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, अभी ध्रुव महाराज का स्थिति कैसा है, उन्होंने बिल्कुल त्याग किए, घर परिवार माँ राजपाट सुख त्याग करके जंगल में गए वनचारी, जंगल पर ही और कोई जंगल नहीं, मधुबन वृंदावन गए, जमुना और वृंदावन के सेवा किए, वहीं रहे, भगवत उपासना किए, इतने कठिन उपासना किए, तो मतलब शरीर उनका पूर्ण शुद्ध तो हो गया होगा ना, कि जो खान पान कुछ किया ही नहीं, हम बोलते हैं थोड़ा बैल सब्जी खाओ ठीक हो जाएंगे, बैल सब्जी खाते थे थोड़ी, ना दूध पीते थे, ना फलाहार करते थे, ना जलाहार करते, क्या आहार करते थे, नो आहार, हवा तक नहीं लेते थे, तो कितने प्यूरिफिकेशन हो गया उनका उनके शरीर में, एक जस्ट इमेजिन, हम लोग तो कर ही नहीं सकते, लेकिन कितने प्यूरिफाइड हो गए होंगे, शरीर को पूर्ण पवित्र था, स्थान पवित्र, काल पवित्र, शरीर पवित्र, मन पवित्र, हृदय पवित्र, सारे पवित्र के बीच में अभी तो भगवान के दर्शन हृदय में हो रहा था, घंटों तक डायरेक्ट रिले हो रहा था भगवत रूप, हृदय अवकाश है, हृदय में सब अवलोकन कर, और उसके बाद वो स्विच ऑफ हुआ तो साक्षात सनयन में सशरीर उनको देख रहे हैं, और देख रहे मतलब तपस्या के द्वारा, तपश्चर्या में पूर्ण सिद्ध है, गुरु कृपा को प्राप्त कर चुके हैं, दीक्षा शिक्षा से बिल्कुल लेस हो चुके हैं, और वो सब होने के बाद अभी सिद्धि करने के बाद साक्षात सिद्धि परफेक्शन दी परफेक्शन भगवान आकर स्वरूप से साक्षात खड़े हैं और कृपा करने के लिए बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है, इस प्रकार कंप्लीट परफेक्शनल स्टेज में कैसे भगवत दर्शन होता है, ये उसका चित्रण ही किया गया, इस प्रकार होता है। हम लोग दर्शन करते हैं ना, ज्ञान भाग ज्ञान भरा पड़ा है, ध्यास में भरे पड़े हैं, और कहीं अटैचमेंट है, शुद्धिकरण तो है ही नहीं, तो देखने से क्या होगा, आंसू गिरेगा ना, दंडवत होगा ना, का भावना होगा ना, ऐसा कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला, ये सब गड़बड़। लेकिन ये सारे जब हो जाए, ये होना स्वाभाविक है, सहज ऐसा होगा, सहज हो। जब हम भौतिक वस्तु के प्रति कभी कभी इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनको भी आलिंगन करना चाहते हैं, चुमना चाटना चाहते हैं, और वो तो भौतिक था नहीं, वो तो परम चिन्मय वस्तु हमार आत्मा के, जो आत्मा सुप्रसिद्ध थी, इस शरीर के साथ संबंध नहीं, सीधा आत्मा के साथ जिसका संपर्क है, जो आत्मा के एकमात्र प्रिय है, प्रेमास्पद है, अगर वो सामने आ जाए तो ये होना तो स्वाभाविक है, सहज है। तो आज बालक ध्रुव सहज रूप से अपने अंतकरण का जो 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 भावना है, जो प्रेम है, जो स्नेह है भगवान के प्रति, प्रकाशित करना चाहते हैं, लेकिन बालक थे, ना बोलने का सामर्थ्य था, ना कुछ क्रिया मुद्रा करने का सामर्थ्य था, अपनी बाल सुलभ अवस्था में वो सहज उत्कट प्रेम को जो प्रकट करते हैं, तो ही होता है कि चुम्बन करना चाहते हैं, पी जाना चाहते हैं, आलिंगन कर जाना चाहते हैं, छोटे बालक रूप में भी यही दशा है। ये भक्ति की, तपस्या की, शुद्धता की, कृपा की परम सिद्धि स्तर है, परम सिद्धि अवस्था है। उस इति सिद्धि अवस्था में अभी आगे आप पढ़ेंगे, भगवान ने लेट नहीं करेंगे, ध्रुव की इस विकलता उनके अंतर्मन की बात जान करके सीधा अपने पंचजन्य के स्पर्श करा देते हैं। भगवत अपने शंख को उनके कपोल में स्पर्श करा दिए, हो जैसे स्विच ऑन करके लाइट जलता, भड़ाक से ध्रुव के शरीर में दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया, सारे वैदिक ज्ञान इमीडिएट इनपुट हो गया, डाउनलोड कर दिए, उनको टाइम थोड़ी लगता, लगा दिए चिप्स, इमीडिएट डाउनलोड, एवरीथिंग कंप्लीट, संपूर्ण वैदिक ज्ञान एट ए सेकेंड डाउनलोड कर दिए उनमें। बोलते अरे केवल वैदिक ज्ञान नहीं, भाषा भी, वाट एवर नॉलेज यू वांट, वाट एवर लैंग्वेज यू वांट टू स्पीक, नोबडी, और राग अलंकार व्याकरण इमीडिएट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे दिए इन ए सेकेंड। इस प्रकार भगवत कृपा, भगवत ज्ञान से समन्वित होकर के अभी बालक ध्रुव भगवान के सामने हाथ जोड़कर स्तुति करना चाहेंगे। आप पढ़ेंगे अद्भुत स्तुति, हमारे आचार्य लोग तो कहिए ध्रुव का स्तुति थोड़ी है, अरे किसका स्तुति है ध्रुव तो, नहीं ध्रुव तो 5 साल का बालक अनपढ़ था, वो की स्तुति कर सकता, बोले किसका स्तुति, वो स्तुति तो साक्षात कृष्ण गर्भ भगवान का है, वो आपने स्तुति ध्रुव के मुख से बुलवाते हैं, स्वयं कर दें, ये भगवत स्तुति है। केवल इंग्रेडिएंट्स ध्रुव को शरीर उनके मुख को यूज किए, लेकिन खुद ही बोलते थे, और संपूर्ण वैदिक ज्ञान का परम तात्पर्य जो स्वयं भगवान ने निर्णय करके बोलना चाहते हैं, तो ध्रुव स्तुति में निकाले उसको, ध्रुव के द्वारा कहे, अति महत्वपूर्ण 12 श्लोक ध्रुव ने कहे, और जो उसमें अंतिम निर्णय जो ध्रुव ने लिए हैं, ध्रुव क्या लिए हैं, भगवान ने लिए हैं, वो आपको पढ़ेंगे देखेंगे, बहुत ही सुनने योग्य, मनन करने योग्य, चिंतन करने योग्य, करने योग्य है, समझने योग्य है। उनका जो फाइनल कंक्लूजन स्टेटमेंट था ध्रुव स्तुति का, सोचा नहीं जा सकता, कब ये सुयोग मिलेगा तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये तो अति ही महत्वपूर्ण बात है, अति महत्वपूर्ण, भक्ति और भक्तों के लिए सुपर रिक्वायरमेंट इस स्थिति में होता है। तो इस प्रकार कैसे ही भगवान के दर्शन करना चाहिए, अगर साक्षात भगवान सामने प्रकट हो जाए आपका सामने, स्वप्न में सोच लो ना, थोड़ा सोचने में कोई पैसा थोड़ी लगता है, कभी ऐसे सोचो कि हम सुबह उठे अल्टर में गए, देखे भगवान खड़े हो गए मेरे सामने, तो आप क्या फील करेंगे, कुछ बोलेंगे, अब जब आ गए तो फिर कुछ दीजिए हमको, हम मांग करेंगे कुछ, है ना, नहीं और क्या करेंगे, लिस्ट पढ़ेंगे, ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए, पता नहीं कब तक रहेंगे, देख जाइए मुझे, हम मुड़ते तो ही मांगेंगे और क्या, शारीरिक सुख की याद करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन ध्रुव क्या चाहते थे, कैसे देखते थे उन्हें, है ना, और इस प्रकार दर्शन, इस प्रकार देखना तभी संभव होगा ई भागवत प्रमाण है। जब सख्यात त्याग तपस्या निष्ठा गुरु कृपा दीक्षा शिक्षा से समन्वित हो जाए, सफल हो जाए, सब कोर्स कंप्लीट कर लो, तब जाकर के इसे दर्शन संभव होगा, नहीं तो नहीं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की समवेत भक्त वृंद की। यस
अरे सर, हमने हमने सुना है कि गुरु महाराज अपना लाइफ को सक्सेसफुल कर पाए क्योंकि उनके लाइफ में मतलब शिशु का आरंभ मगर कभी कभी मेरे लाइफ में भी ऐसे शुद्ध भक्त हैं, कभी मेरे लाइफ में मतलब सक्सेस कर नहीं पा रहा।
शुद्ध भक्त कभी लाइफ में मिल भी जाए, हम उनको उपदेश को हुबहू पालन नहीं करते। वी आर ऑल स्टेइंग इन आवर कंफर्ट जोन, अपना आरामदायक स्थिति में रहना चाहते हैं। ध्रुव महाराज आरामदायक स्थिति में रहना चाहते थे। उनका जो 6 महीने का जो क्रिया मुद्रा से, ये जान लीजिए व्हाट वाज हिज मूड, कितने कठिन से कठिन होना चाहते थे। हम थोड़ा और आराम से और आराम पाना चाहते हैं, बिल्कुल अपोजिट है ना। आया समझ में?
आराम तो
आपको पूछो ना। अरे बाबा, हम कहीं भी सेवा दे दे उसके लिए सुविधा ये नहीं है ना। इधर बाजार गाड़ी नहीं है, ड्राइवर ही नहीं है, पैसा इतने कम से थोड़ी चलेगा, है ना। नहीं, ध्रुव महाराज जब घर से निकले थे, कोई मांगे थे क्या, माँ ये तो दे दो, ये नहीं तो क्या करूं, मांगे थे कुछ। वो जंगल जा रहे थे, हम मार्केट जाएं तब क्या करके जाएं। एवरी स्टेप यू कैन थिंक लाइक दैट, कितने अंतर है।
बेसिक नीड्स
तो उनको बेसिक नीड्स नहीं चाहिए था, यही तो बता रहा था। हमारा तो ही, क्योंकि हमारा शरीर के प्रति ध्यान है, भगवान के प्रति इसमें इस प्रकार ध्यान हुआ ही नहीं। हम कर भी नहीं सकते, मैं आपको नहीं बोलता हूँ ऐसा करो करके बोलेंगे लोग पागल हो गया करके। लेकिन ध्रुव महाराज की किस्म, उनका माँ ही थी, उनकी माँ थी, वो भी नहीं सोची कि बेटा मेरा पागल हो रहा है, करो नहीं, इज डूइंग राइट। अगर आप ऐसा करना चाहेंगे ना, लोग बोले मैड, हम तो ऐसे करेंगे ही नहीं, लेकिन बाई चांस कोई करने लगे ना, हम भी ऐसे बनना चाहेंगे, लोगों ने पागल हो गया तो, है ना। तो इतने पूर्ण भरोसा अनुसरणीय हो तब फिर ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए डोंट इमिटेट ध्रुव महाराज। वर्तमान कलियुग में बड़े कृपा करके आचे लोग जानते हैं हमारा दशा क्या है, हमें वी कैन डू लाइक दैट। तो इसलिए आराम के साथ बड़े सरल भाव से केवल हरे कृष्ण मंत्र को चैंटिंग करो, और जो अधिकारी जो सेवा दिया गया इतना सेवा करो, इतने में ही काम बन जाएगा। भाई इतने नहीं कर पाते हैं, ध्रुव के दिवस कहा जाते हैं। प्रभुपाद बोले थे, बोले यू जस्ट फॉलो फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल एंड चैंट 16 राउंड्स, नॉट 64 राउंड्स, इवन चैंट 16 राउंड्स नाइसली, फॉलो फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल एंड डू वट एवर सर्विस अथॉरिटीज गिविन। इफ यू डू ओनली दीज 3 थिंग्स देन यू विल गो बैक टू गॉड हेड। एक ने पूछा, बोले प्रभुपाद ना क्या ना, मैं तो सुना हूँ, भारतीय था, मैं तो सुना हूँ कि जन्म जन्म मुनि क्या साधन करही तब अंतराम नाम आवत, यही से पद है, जतन करे तभी, जतन करने पर ही जन्म जन्म तभी ना होता है। आप बोलते हैं अभी हो जाए के, बोले इतने में, अरे दोशाला मला करने डेढ़ दो घंटे में पूरा कर ही देते हैं हमने, बाकी अपने मगजमारी करते रहे, इसमें काम बन जाएगा। जब ये पूछे, प्रभुपाद जी ने उत्तर दिए उनको, बोले सो, प्रभुपाद जी के स्टाइल, सो व्हाट डू यू थिंक, आई एम चीटिंग यू, क्या सोच रहा मैं आपको ठग रहा हूँ ना। प्रभुपाद गुरु जी सुनिंदा, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपके दस, तू कर ही नहीं सकता उसके अलावा ज्यादा। अगर तू इतना ही करेगा, सोचो मत कि इतना करने से कुछ बन जाएगा, तेरा कुछ भी नहीं होने वाला इतने में। लेकिन तू अगर इतना मेरे आदेश के अनुसार करोगे तो बाकी जो कर बाकी है वो मैं करूँगा आपके लिए। अगर हम प्रभुपाद के आज्ञा में केवल इतना करते हैं, हमारे लिए और जो बाकी गैप है, ही विल डू दैट। बोले मैं उसको पूरा करूंगा और ले जाऊंगा, ये मेरा गारंटी है। इतना तो करो, बाकी तो कर ही नहीं सकता तुमने, है ना? सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड डू दैट ओनली। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न तो नहीं है ना? समय भी हो चुका है। हरे कृष्ण।